السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذی الحجہ کا یہ عشرہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا، اس کے اوپر ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں یہ عشرہ مل جانا، جانتے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے بخشش کا، ایک اور ذریعہ دینا چاہتا ہے اپنے قرب کا، ایک اور چانس دینا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم جہنم سے اپنی نجات کا پروانہ حاصل کر سکیں. یہ اس کی بہت ہی بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے. ورنہ ہم تو دنیا کے کام دھندوں میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ خیال بھی نہیں رہتا کہ وقت تو بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور ہم نے ابھی تک اپنی آخرت کے لیے کافی کمائی نہیں کی ہوئی. کبھی خیال آ بھی جاتا ہے تو کچھ دیر میں پھر وہی دنیا کی مصروفیات اپنے اندر اتنی مشغول کر لیتی ہیں کہ ذہن سے محو ہی ہو جاتا ہے کہ اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اور مجھے تو ابھی اس کے لیے بہت کام کرنا ہے. میری زندگی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور میرے پاس اتنا کافی سامان نہیں ہے کہ جو مجھے وہاں کی ناکامی سے بچا کر کامیابی کی منزل تک پہنچا دے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کافی نیکی ہے آخرت کے دن کے لیے؟ اگر نہیں تو دیر کس بات کی ہے، لگ جائیں اس راستے میں اور خود کو کھپا دیں ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. کل ہی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ صرف وہ شخص آپ سے آگے نکل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سب کچھ ہی لٹا دے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہ جائے سوائے اس کے. کوئی اور بھی عام دنوں کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے بڑھ نہیں سکتی. پھر تو ہمارے شوق کا عالم کیا ہونا چاہیے، ہمیں نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے حصہ لینا چاہیے، اور ورائٹی آف نیکیاں کریں، یعنی ہر قسم کی نیکی میں اپنا حصہ ڈالیں. جیسے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ جگہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، صرف ایک جگہ پہ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں سے پروفٹ نہ ہوا تو دوسری جگہ سے ہو جائے گا، دوسری جگہ سے نہ ہوا تو تیسری جگہ سے ہو جائے گا. تو آپ کی نیکی بھی ہر طرف پھیلی ہونی چاہیے، یہاں بھی انویسٹ کر دوں، وہاں بھی کر دوں، کیونکہ آخرت کے بازار میں نہ جانے وہ کون سی نیکی ہے جو بھاری تل جائے، کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کی خاطر کھانا کھلا دینا ہی وہاں پہ بہت بھاری تل جائے، ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ کر دینا یہی کام وہاں پہ سب سے بھاری تلے، ہو سکتا ہے کوئی نفلی نماز ہو جو پابندی سے پڑھی گئی اور وہ بہت بھاری تلے، یا قرآن پاک کی تعلیم یا اللہ تعالیٰ کا ذکر. ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی ہے جو بہت بھاری ہو جائے گی. یا ہو سکتا ہے ہمارا اچھا اخلاق، ہو سکتا ہے ہم نے زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کر دی ہو کہ وہی اس دن بہت بھاری ہو جائے. جیسے کہ ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، تو ہم نہیں جانتے. لہٰذا نیکیاں کرنے میں کبھی ایک چیز پہ بھروسہ نہ کریں کہ میں تو یہ کر رہی ہوں لہٰذا مجھے تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں، ہر جگہ پہ خود کو لگائیں، ہر جگہ پہ خود کو کھپائیں، سوچیں کہ یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی، میرے پاس یہ چانس ہیں، میں کیوں نہ ان کو کر جاؤں. اور یہ آج ریئلائز نہیں ہو رہا، مگر کل جب زندگی کی مہلت ختم ہوگی نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنی زبردست چانسز ملے ہوئے تھے، کتنی قیمتی تھی یہ زندگی، जो हमने इधर उधर गंवा दी और रियलाइज़ ही नहीं किया कि हमारे पास ये कितना ज़बरदस्त ख़ज़ाना है जिसे हम अपनी जन्नत बना सकते हैं। एक शायर ने हाल ही के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म लिखी थी, हाल ही मतलब हल चलाने वाला किसान। उस नज़म का ख़ुलासा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि वो शायर कहता है कि किसान को अपने खेतों में हल चलाते चलाते अचानक कीमती हीरों का ख़ज़ाना मिल गया, लेकिन किसान चूँकि इन हीरों की कदर कीमत नहीं जानता था तो उसने हीरों को महज पत्थर समझा। जब फसल पक गई तो किसान अपनी फसल की हिफाजत के लिए इन्हीं पत्थरों को फेंक फेंक के परिंदों को उड़ाता था। इस तरह उसने वो सारा ख़ज़ाना ज़ाया कर दिया। एक रोज़ वो किसी काम से शहर गया तो 2-3 पत्थर बेध्यानी में साथ ले गया। जब उसका गुज़र जौहरियों के बाज़ार से हुआ तो एक जौहरी ने उसको बुला के पूछा, क्या ये हीरे बेचना चाहोगे? किसान ने ताज्जुब से जवाब दिया, कौन से हीरे? जौहरी ने कहा, ये जो तुम्हारे हाथ में है। किसान ने ये जब बात सुनी उसको इतना सदमा पहुंचा कि वहीं खड़े खड़े उसने दर्द भरी आह भरी और वहीं गिर के मर गया। सामईन कराम, कहीं आज हम भी तो इन ज़िंदगी के कीमती लम्हात को परिंदे उड़ाने का काम लेकर ज़ाया तो नहीं कर रहे? ये तो वो अनमोल हीरे हैं जो कभी वापस नहीं मिलेंगे। इनमें हम नेकियां कमा लेंगे तो आखरत के बाज़ार में ये बहुत महंगी तुलेंगी, और इनको हमने गंवा दिया तो फिर ये वहाँ किसान की तरह हसरत ही का नाम हो जाएगा। इस नज़म का शायर कहता है आखिर में कि ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी का तो एक एक सांस अनमोल हीरा है, हीरे की तरह कीमती है, जिसका इस ज़िंदगी में तुझे एहसास नहीं है, लेकिन जब तू ये दुनिया छोड़ के आखरत के बाज़ार में पहुँचेगा तब तुझे पता चलेगा इसकी कदर कीमत क्या थी, तब अंदाज़ा होगा। जैसे किसान जब जौहरियों के बाज़ार में पहुँचा तब उसको एहसास हुआ कि मेरे पास तो कितना बड़ा ख़ज़ाना था जो मैंने यूं ही लुटा दिया, किन कामों में उसको गंवा दिया, परिंदे उड़ाने में, हीरों के साथ परिंदे उड़ा रहा था। और हम भी कहीं इन सांसों के साथ सिर्फ परिंदे तो नहीं उड़ा रहे कि बेकार के काम, इधर उधर के काम जिनका कोई फ़ायदा नहीं, उनमें हम इन सांसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने ऐसा ही किया तो आखरत में जाके सिवाय अफसोस के और हसरतों के कुछ भी नहीं रह जाएगा, लेकिन उस वक्त ये गम और अफसोस कुछ काम नहीं आएंगे। आज देखें, थोड़ा सा अपने दिन का जायज़ा लें, किधर लग रहा है, मेरी ये जान तो बड़ी कीमती है, ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, वापस नहीं आनी, क्या हम कल का दिन वापस ला सकते हैं? या चलें कल को छोड़ दें, पिछला घंटा वापस ला सकते हैं? वो भी छोड़ दें, जब से ये लेक्चर शुरू हुआ उस वक्त को वापस ला सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हम अरबों खरबों भी खर्च कर दें तो उसको नहीं वापस ला सकते। तो इस कीमती ज़िंदगी को सिवाय जन्नत खरीदने के और किसी चीज़ के बदले में ना बेचें। आप अपनी इस जान को लगा के जन्नत जैसा बेश कीमत बहुत महंगा सौदा ख़रीद सकते हैं। वो जो लाजवाल नेमत है उसको जवाल नहीं है, कभी कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो इतनी कीमती है कि उसमें हदीस में आता है एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा समझते हैं वो जिससे घोड़े वगैरह चाबुक जिसको कहते हैं, कितनी सी जगह लेता होगा। वो कूड़ा रखने की जगह दुनिया और जो कुछ दुनिया में उस सबसे बेहतर है। इतनी सी जगह भी किसी को जन्नत में मिल जाए, लेकिन सोचें कि उसका तो अदना सा जन्नती भी, सबसे छोटे लेवल का जन्नती भी इतनी बड़ी जन्नत पाएगा जितनी ये दुनिया जो कुछ इसमें है और इससे 10 गुना बढ़ के। वो जन्नत ऐसी जिसका अर्ज आसमान और ज़मीन के बराबर है, तो तूल कितना होगा, क्योंकि हमेशा अर्ज तूल से कम होता है। तो अर्ज ही अगर आसमान और ज़मीन के बराबर है तो आप उसकी लंबाई का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। ऐसी जन्नत जिसमें बुढ़ापा नहीं, ऐसी जन्नत जिसमें मौत नहीं, जिसमें जुदाई नहीं, जिसमें बीमारी नहीं, जिसमें गम नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं हैं, कोई परेशानी नहीं, डिप्रेशन नहीं, सिवाय खुशी के और वहाँ पे कुछ भी नहीं। क्या वो जन्नत इस काबिल नहीं है कि उसके लिए हम ये ज़िंदगी लगाएं? अभी ज़िंदगी की बात छोड़ें, ये चंद दिन ही लगा दें, क्या वो जन्नत वर्थ नहीं है आपकी नज़र में कि इन दिनों को डेडिकेट कर दें हम उसको कमाने के लिए, ताकि जहाँ ज़िलहज के इन दिनों में हाजियों को अल्लाह ताला जहन्नुम से रिहाई दे दे, उनको ये खुशखबरी मिल जाए कि अल्लाह ताला ने तुमको जहन्नुम से आज़ाद कर दिया, वहाँ हमें भी घर बैठे ये खुशखबरी मिल जाए, क्या ये वर्थ नहीं है? और जहन्नुम वो जो सबसे हॉरिबल चीज़ है, उससे ज़्यादा बुरी जगह कोई नहीं। और ये क़ुरान कहता है कि बहुत बुरा ठिकाना है, लिहाजा जिसको जहन्नुम से निजात मिल गई तो फिर तो कोई तीसरी जगह है नहीं सिवाय जन्नत के। वफरीकन फिल जन्ना वफरीकन फिल नार, अल्लाह ताला ने फरमाया एक फरीक जन्नत में होगा और एक जहन्नुम में होगा, आग में होगा। जो आग से बचा लिया गया उसके लिए जन्नत है, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए अपनी नेकी के पलड़ों को भारी करना होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त है अपनी उम्मत के लिए, जिन्होंने हमें ऐसे बहुत सारे काम बता दिए जो हमारे नेकी के पलड़ों को भारी करने वाले हैं। मीज़ान में अमल तो बहुत आसानी से किए जाने वाले कामों से हो जाएगा। जो अमल आप करेंगे यहाँ पर, उनमें ज़्यादा मुशक्क़त नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मुशक्क़त भूल जानी है। अब आपको क्या रमज़ान की मुशक्क़त याद है? कुछ भी याद नहीं। अगर आप रातों को जागे तो अब आपको कौन सी थकावट हो रही है या कौन सी तकलीफ़ हो रही है? कुछ भी नहीं, वो भूल भाल गए हम। लेकिन जानते हैं उसका अजर हमारे लिए लिखा गया है। हमें शायद याद भी ना हो हम कितने घंटे जागे, कितनी इबादत की, मगर वो सब अल्लाह ताला के रिकॉर्ड में सेव है और उस दिन जाके मिलेगा इंशाल्लाह। तो अमल बहुत आसान है, इस लिहाज से देखें तो इस वक्त शैतान हमें भारी करके दिखाता है, मुश्किल करके दिखाता है, और मुश्किल है नहीं, आसानी है उसमें, मगर अजर बहुत ज़्यादा है। तो आज थोड़े से ऐसे अमल देखते हैं कि जो करने में बहुत आसान, अजर में बहुत ज़्यादा। एक तो हम सब के साथ ये होता है कि हाय लोग हज पे चले गए, हम रह गए, इसके ऊपर हम बड़ी हसरत करते रहते हैं, रोते रहते हैं, और हर कोई जा भी नहीं सकता। हम में से हर कोई हर साल थोड़ी जा सकता है, तो अब क्या करें? तो फजर की नमाज़ पढ़ के बैठे बैठे अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें, और सूरज निकलने के बाद 2 रकत सिर्फ नमाज़ पढ़ लें, तो अल्लाह ताला हज और उम्रे का सवाब देगा। घर बैठे ही इतना बड़ा सवाब मिल गया, आपने ना कोई माल खर्च किया, ना कोई सफ़र की तकलीफ़ उठाई, نہ وہ کہیں جانے کی مشقت ہوئی، بغیر کسی تکلیف کے آپ کو یہ حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہو گیا۔ پھر ذرا سورج تیز ہو جائے تو جیسے 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت 4 رکعت پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ فرمایا دن کے شروع میں جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، باقی سارے دن میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی بھی انسان آپ سے کہے کہ آپ یہ کام کر لیں، بس اس کے بعد مجھ پہ چھوڑ دیں، باقی سارے کام میں آپ کے میں دیکھ لوں گا، آپ بس وہاں پہنچ جائیں، باقی آپ میرے اوپر چھوڑیں، تو آپ کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا جی، اس نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ دے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تو پھر کوئی فکر کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ دیکھ لیں نا کہ یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں خود کو تھوڑا سا فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، سارا دن بس اعتکاف میں بیٹھ جائیں، لیکن تھوڑا تو اپنی مصروفیات کو کم کریں۔ اگر وہی ڈیلی کا جو بزی اسکیڈول ہے، جو فل ہے کاموں سے، اس کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دن کے کاموں میں خود کو تھوڑا سا فارغ کریں، تب یہ کام انجام پا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے فالتو کام ہمارے دن میں ہوتے رہتے ہیں، ہم یوں ہی انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ براؤزنگ کر رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، فلاں کی ادھر کی ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، فون میں لا لے رہے ہیں تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ لگ گیا، اسی طرح شاپنگ کرنے چلے گئے تو 2-4 گھنٹے اس میں گزر گئے، تو ہم اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو نیکی کرنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، کون سا فرض ہے؟ ان دنوں میں سب سے مشکل بات یہی ہے۔ دیکھیں رمضان میں تو روزے فرض ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے رکھنے ہی ہیں۔ ان دنوں میں شیطان کہتا ہے کون سے فرض ہیں، چھوڑو ایک رکھ لیں گے، آپ کو منیمم سے منیمم پہ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یہ سنتیں کون سا فرض ہیں، یہ تو سنت ہی ہے، نفل ہی ہیں، کیا فرق پڑ گیا اگر نہیں بھی کیا؟ ہاں تو آج تو واقعی کوئی شاید فرق نہ پڑے، مگر آخرت میں جب نیکیاں تلنے لگیں گی نا، تب پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ جہاں پہ ایک مسکراہٹ بھی تلے گی، جہاں پہ ایک سبحان اللہ بھی تلے گی، جہاں پہ کسی کو سلام کرنا بھی تلے گا، وہاں پتہ چلے گا ان چیزوں کا ویٹیج کیا تھا، کیا وزن تھا ان کا، اور میں نے یوں ہی چھوڑ دی، میرے پاس کتنے ہی دن تھے، کتنے ہی گھنٹے تھے، میں نے یوں ہی ویسٹ کر دی۔ اس کسان کی طرح جس کو ہیروں کی قدر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سانسیں ہیں، یہ کہاں تک ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ بس سانس بند ہو جائے گی تب بک بھی بند، اعمال نامہ بند، تب کچھ اس میں اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج جس حالت میں بھی ہیں، چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہیں، اور سبھی مصروف ہیں، ہر ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن ہم نے ٹائم نکالنا ہے، انہی دنوں میں ہم نے ٹائم نکالنا ہے، ورنہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ دن کسی کا بھی انتظار نہیں کریں گے کہ جی آپ فارغ ہوں تو آپ نیکی کوئی کریں۔ اس میں اپنے راستے میں آنے والی ہر نیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ عبادات ہیں۔ آپ دیکھیں اسی طرح ظہر سے پہلے اگر آپ 4 رکعتیں سنت پڑھ لیتے ہیں، جو ہم میں سے اکثر پڑھتے ہی ہیں، اور ظہر کے بعد بھی اگر آپ 4 پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم پر حرام قرار دے دے گا، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ہم 4 پہلی تو پڑھتے ہیں، بعد میں ہم 2 پڑھتے ہیں جو سنت موقع ہے، ان دنوں میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، ان 2 کو 4 بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی بڑی بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو کچھ ایڈ کریں اپنی ڈیلی عبادات میں، یہ نہیں کہ جو روز کرتے تھے وہی کرتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے آپ نے کیا ایڈ کیا ہے؟ ظاہر ہے जो जिस पॉइंट पे है उस पे वो नहीं रहे, एक कदम आगे बढ़ाएं। अब हर एक डिफरेंट जगहों पे है ना, डिफरेंट दर्जों पे है। जो अभी तक फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ रहे तो मैं उनको नहीं कहूँगी कि वो ये ऐड कर लें और ये शुरू कर दें, नहीं, वो पहले अपने फ़र्ज़ों पे तवज्जो दें कि हमने अपनी 5 फ़र्ज़ नमाजें लाजमी पढ़नी, एक भी ना छूटे। वो इसकी सख्त पाबंदी करें। जो लेट कर करके पढ़ते थे, पढ़ तो लेते थे लेकिन हमेशा लेट, वो अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि कामों में से अफजल काम है अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। तो अगर बाद में भी पढ़ लेंगे हो तो जाएगी, मगर वो नमाज नहीं होगी अजर में जो अव्वल वक्त में पढ़ी गई नमाज होगी। लिहाजा जो ही अजान हो आज कल ये कोशिश करें कि मैं फ़ौरन पढ़ लूँ ताकि मेरा अजर ज़्यादा लिखा जाए। जितना डिले करेंगे अजर में कमी होती चली जाएगी, लिख ली जाएगी, हो जाएगी, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं होगी, लेकिन क्या फ़ायदा, हमने पढ़नी तो है ही, तो क्यों ना शुरू में ही पढ़ लें, सिवाय ईशा की नमाज के, उसको आप डिले कर सकते हैं और उसको डिले करना बेहतर है, मगर आधी रात के बाद नहीं। उसमें भी इतना डिले ना हो कि तहज्जुद का वक्त हो जाए। इसी तरह जो नमाजों की पाबंदी भी करते हैं वो फिर अपनी सुन्नतें बढ़ा लें, अपना खुशू बढ़ाएं, अपना फोकस बढ़ाएं नमाज में, ऐड करें कुछ ना कुछ, ताकि क़यामत के दिन अगर नमाजों में, फ़र्ज़ नमाजों में कमी बेशी होगी ना तो इन्हीं सुन्नतों और नवाफिल से पूरी की जाएगी। तो हमें तो याद भी नहीं है जब हम बाले हुए थे, हमारे पास, हमारे ऊपर जो नमाजें फ़र्ज़ थीं हमने फिर उनको किस तरह अदा किया, इतनी समझ ही नहीं थी उस वक़्त, उनमें कोई खुशू था भी कि नहीं, उनमें कितनी कमियां बेशियां थी, आज तक भी खुशू नहीं पा सके। और जिन्होंने तो ज़िंदगी में लेट ही शुरू की, बाद में उनको पता चला कि जी फ़र्ज़ नमाज भी हमें ज़रूरी पढ़नी थी, अब रियलाइज़ हुआ है, और कई साल बेनमाजी होने की हालत में गुजर गए, उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है कि आप इन दिनों में नवाफिल की कसरत करें। यही जो सुन्नतें मैं आपको बता रही हूँ ये भी पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें कसरत से, ताकि उन दिनों की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए। लोग पूछते हैं कि कज़ाए उम्री पढ़ लें, क्योंकि हमारी नमाज़ें कई पिछले ज़माने की छूटी हुई हैं, तो कज़ाए उम्री तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप नवाफिल का एहतमाम कीजिए। और इन दिनों से बेहतर और दिन कौन से हो सकते हैं कि आप इन में नवाफिल अदा करें और साथ साथ दुआएँ करते गएँ कि या अल्लाह उस वक़्त नहीं समझती, या अल्लाह नहीं अक्ल थी, या रब तू इन मेरी नमाजों को, इन मेरे नवाफिल को, या अल्लाह उन फ़र्ज़ों के बदले में तोल देना। 12 सुन्नत मुक्कदा अगर नहीं पढ़ते तो वो पहले शुरू करें, जैसे कि हदीस में आता है जिसने दिन और रात में 12 रकत अदा कर लें ये सुन्नतें, उसके लिए इनके बदले में जन्नत में घर बना दिया जाता है। तो आज कितना टाइम लग जाएगा बताएं, हम एक फ़ोन पे व्हाट्सएप ही खोल लें ना तो कम से कम हमारे 15-20 मिनट तो उसमें ऐसे ही चले जाते हैं, हर एक का टेक्स्ट देखते हुए, जवाब देते हुए। इन सुन्नतों में इतना भी टाइम नहीं लगता। ये कौन सी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जोहर से पहले 4 रकत और जोहर के बाद 2 रकत, ये मौक़दा है। अगर आप 2 से बढ़ा लेंगे, 4 कर लेंगे तो और भी अच्छा है, फिर आपके लिए वो दूसरी खुशखबरी भी है। इसी तरह 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के फ़र्ज़ों के बाद और 2 फजर के फ़र्ज़ों से पहले, ये 12 हो गई। तो ये तो जो लोग फ़र्ज़ पढ़ते हैं अब वो बढ़ा लें और इनको ज़रूर ऐड कर लें। फिर जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इस अशरे की नमाज बाकी दिनों की नमाज से बेहतर है, इस अशरे का कुरान बाकी दिनों के कुरान से बेहतर है, यानी अफजल है अल्लाह के नज़दीक, तो हम क्यों ना अपनी नमाजों में इजाफ़ा करें, क्यों ना अपने कुरान पढ़ने में इजाफ़ा करें। फिर दुआ का क्या कहेंगे आप, क्या दुआ भी बेहतर है बाकी दिनों में मांगी जाने वाली दुआओं से? जी हाँ, दुआ भी बेहतर है, दुआ भी अफजल है। लिहाजा उठते बैठते दुआएं करें। दुआ इबादत है और दुआ करने के लिए ना कोई वुजू करने की शर्त है ना ही पाकी की शर्त है। दुआ हर हाल में आप मांग सकते हैं और इंसान की ज़रूरत भी है। तो दुआएं करते जाएं सारा दिन। और बाज़ दुआएं तो इंसान को बड़ी मुश्किलों से निकाल देती हैं, बड़े मसाइल से निकाल देती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं को ही अपना सहारा बनाते थे। और एक बड़ी प्यारी दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मांगते थे जब आपको सख्त तकलीफ़ या परेशानी होती थी। फरमाते थे, या हय्यू या कय्यूम बी रहमतिका अस्तगीस। ए हय और ए कय्यूम, तेरी रहमत की मैं मोहताज हूँ, मैं तेरी रहमत की फरियाद करती हूँ। तो इसके अंदर आप अल्लाह ताला से उसकी रहमत मांग रहे हैं। आप आगे भी बढ़ाना चाहें, फ़ासली ली शानी कुल्ला वला तकिल नीला नफसी तरफता आइन, अल्लाह मेरे सारे ही कामों को अच्छा कर दे। कितने ही काम हमारे उलझे हुए होते हैं, अल्लाह सबको सही कर दे। और एक लम्हे के लिए भी, एक आंख के झपकने के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। मुझे क्या पता, मुझे तो इतनी अकल नहीं, समझ नहीं क्या करना है, तो मेरे अपने हवाले ना मुझे करना है, अल्लाह तू ही मुझे थाम ले। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बात फरमाई इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या ज़ल जलाली वल इकराम को लाजिम पकड़ लो, यानी अल्लाह ताला के इस इसम के साथ उसको पुकारो। तो जब दुआएं मांगे ना तो इस नाम के साथ मांगा करें, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। सजदों में जाएं तो सजदे लंबे कर लें, उसमें आप दुआएं मांगें। दुआ तो हमारी ही ज़रूरत है ना। तो दुआ के लिए जब आप सजदे में जाएं तो या ज़ल जलाली वल इकराम कह के फिर अपनी दुआएं मांगें। इस तरह उम्मीद है कि आप तकबीरात से अपना दिन सजा रहे होंगे। एक और भी अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी हम्द का ज़िक्र है और वो भी आप मांग सकते हैं, और वो है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। इसलिए मैं आपको वैरायटी इसकी बता रही हूँ कि आप वैसे तो आप अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये वाला ज़िक्र कर ही रहे होंगे तकबीरात इस तरह, लेकिन इस तरह से भी आप अल्लाह ताला की हम्द सना बयान कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन दिनों में कुरान करीम को मुकम्मल करने का इरादा किया तो ये काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। बहुत से लोग इस वजह से बैठ जाते हैं, कौन सा हमसे ख़त्म होना है तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि कितना ख़त्म होता है, आप बस शुरू हो जाएं, कोशिश तो करें, अल्लाह ताला मुकम्मल करा देगा। और ऐसे लोग हैं जो वाकई इन दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। अगर आप 3 से 4 पारे हर दिन पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा 10 दिनों में, कोई मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा कोशिश ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम करने की कोशिश करें। इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे आज हमने सुन्नतों की बात की, तो जब आप वो सुन्नतें पढ़ने लगें तो उसमें कुरान करीम को आप हाथ में पकड़ के उससे देख के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हमें याद नहीं होता अनलेस कि आप कोई हाफिज़ हैं या हाफिज़ा हैं। तो आप उसमें से देख के पढ़िए ताकि कुछ ना कुछ पोर्शन आपका नमाज में भी कवर हो जाएगा, नमाज में खुशू भी आ जाएगा, तवज्जो भी रहेगी। तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं, बाकी टाइम आप वैसे बैठ के पढ़ लें। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और इस अशरे को हमारे लिए इतना ज़्यादा बाबरकत बना दे, इतना ज़्यादा हम इससे फ़ायदा उठा सके कि क़यामत के दिन हमें हसरत ना हो कि हमारे पास वो दिन आए थे और हमने यूं ही गंवा दिए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।